الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في آخر يوم من شعبان يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة الحديث اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے انسان بنایا اور دولت ایمان عطا فرمائی, نشود نصیب دشمن. میرے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر سناتے تھے کہ نشود نصیب دشمن کی شود ہلاک تیغت. محبوب کو خطاب کیا کہ اے محبوب, یہ دشمن کا نصیب نہ ہو کہ وہ تیرے تلوار سے ہلاک. سرے دوستاں سلامت, عاشقوں کا سر اس کو سلامت رکھے کہ تو خنجر آزمائی. تجھے ٹریننگ کرنی ہے اور تمرین اور مشق کرنی ہے عاشقوں کی گردن اڑانے کی, ہمارا سر حاضر, ہمارا سر حاضر. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کئی موقعوں پر اس شعر کو پڑھتے تھے اور اس میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, یہ ان کا حکم ہے, تو ان کے حکم کی تعمیل میں, تعمیل فرما برداری میں اگر ہمارے دل پر چھریاں بھی چلتی ہے تو اے محبوب, آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سرے تسلیم خم کرنا. آپ کے حکم کی فرما برداری میں, آپ کے حکم کی تعمیل فرما برداری میں ہم اپنا سر جھکاتے ہیں, یعنی آپ کی بات کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں اور آپ ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں. یہ ہے انت مولانا کے معنی. انت مولانا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت, वाफ अन्ना वाफिलना वरहमना अंत मौलाना, अंत मौलाना ऐ मालिकुना व सैयदुना व मुतवल्ली उमूरिना। ये अल्लामा आलूसी सैयद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, उस तफसीर का नाम है रूहुल मआनी, अरबी जबान में है। और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कायनात में अरबी जबान की सबसे बड़ी तफसीर है। वल्लाहु आलम। तो उन्होंने फरमाया इसकी तफसीर में कि अंता मालिकुना, आप हमारे मालिक हैं, वसय्यदुना, आप हमारे आका हैं, वह मुतवल्ली उमूरिना, और आप हमारे कामों की तवल्लियत यानी कामों को बनाने वाले हैं। सुभान, कैसा मालिक, जो मालिक और आका भी है, कामों को भी वही बनाता है। सबका दाता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, कामों को बनाने वाला है। सुभान, लगा अल्लाह ताला की तामीले फरमाबरदारी में एक अमले महब्बत, महब्बत का मिजाज है महबूब पर माल को खर्च करना, ये मिजाज महब्बत है। बल्कि मिजाज महब्बत तो यह है कि सिर्फ महबूब पर नहीं बल्कि महबूब के मुकर्रबीन पर भी खर्च करना। अच्छा जनाब, जब शादी होती है तो सिर्फ बीवी को जोड़ा देते हैं या उसके माँ बाप, उसकी खाला, उसकी फूफी, उसकी बहन, तो भाई सबको देते जोड़ा? शादी तो एक से है, आखिर ये सबको जोड़े जोड़े क्यों मिल रहे हैं, इतने जोड़ पैदा हो। तो एक लैला की मोहब्बत में जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, बाकी किसी से वास्ता सिवाय माँ बाप बहन भाई के, खाला फूफी से वास्ता तो साल भर में, बाद मरता तो बरसों बरसों वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन बीवी की मोहब्बत का आलम यह है कि सिर्फ उस पर नहीं, उसके महबूब पर भी, कुर्ब जवार वालों पर, उसके रिश्तेदारों पर भी माल को खर्च करना, इसको भी अदाए मोहब्बत कहा जाता है। सही जनाब, अदाए मोहब्बत और हुकूके मोहब्बत। तो बस यही मोहब्बत का अमल शरीयत के सांचे में ढल जाए तो इसको ज़कात कहते हैं, और इसी को सदका बोलते हैं, और इसी को फितरा कहते हैं, और इसी की एक शक्ल कुर्बानी की भी, और इसकी एक शक्ल हज की भी है, हज और उमरा, ये भी इसकी एक शक्ल और सूरत है। माली माली हक अदा करना, माल के तौर पर माल को खर्च करना, ये इसको हक मोहब्बत कहा जाता है। लगा ज़कात का जो हुक्म है ये अल्लाह ताला का एहसान है। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं, वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम लिरजुल तुखरिजु ज़कात मिन मालिका, कि आपने एक शख्स से फरमाया कि तुम अपने माल में से ज़कात निकालो, फइन्नहा तुहरतुन तुताहिरुका, कि ये तुम्हारे लिए पाकी है, तुम्हें पाक करेगा। न सिर्फ ये कि तुमको पाक करेगा, तेरे माल को भी पाक करेगा। और इस सिलसिले में कायदा भी फरमाया कि व तसिलु अक्रिबा अका व तारिफु हक्कल मिस्कीन वल जारी वस्साइल, के इसके अंदर ये तुझको ये जो तू अतिया दे और ये जकात अदा कर अपने रिश्तेदार हैं और पहचान ले मसाकीन को, मसाकीन को पहचान ले। ये खास आप सल्लम ने कैसे फरमाया, व तारिफ हक्कल मिस्कीन, मिस्कीन के हक को जान ले, उसकी मार्फत हासिल कर ले और उन लोगों को पहचान ले। और साइल कोई सवाल करने वाला है, जरा देख ले जरूरतमंद है, ऐसा ना हो कि तूने उसको झिड़क दिया। साइल के बारे में फरमाया कि वह अम्मसाइला फला तनहर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने उम्मत को फरमाया कि साइल को, मांगने वाले को, सवाल करने वाले को झिड़को मत। अगर तुमको नहीं देना, अगर तुमको नहीं देना तो न दो, लेकिन उसके साथ बेरुखी और बुरा बर्ताव मत करो। एक वाकया लिखा है बुजुर्गों ने, एक शख्स अपनी घरवाली के साथ खाना खा रहा था, उम्दा खाना और उम्दा गिजा थी। अचानक आवाज आई, दरवाजा खटखटा, तो घरवाली उठी, उसने पर्दे से पीछे पूछा कौन, तो उसने कहा साहिल, अल्लाह के नाम पर रोटी मांग। तो उसके शौहर ने क्या कहा, उसने कहा कि ये सब खाना दे दो उसको। ये सब खाना दे दो, माल शौहर का है, हक उसका है, उसने उठाया और बाहर ले गई। थोड़ी देर में आई जब वो, तो रोती भी आई। शौहर ने पूछा कि क्या बात है। जब रोते रोते जरा कुछ तबीयत संभली तो उसने कहा कि बात यह है कि जो दरवाजे पर साइल था, ये मेरा साबिका शौहर था, तो हुआ ये कि वो पहले बहुत मालदार था, माल खत्म हो गया, यहां तक के बीवी को भी फारिग कर दिया कि उसके हुकूक अदा करने की माली तौर पर कोई गुंजाइश न रही, तो उसने उसको फारिग कर दिया। तो बात होने लगी तो शौहर ने पूछा कोई वजह आखिर कि माल ऐसे ले ले। कहा और तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ था कि मैं और वो साबिका जब शौहर थे, हम खाना खा रहे थे, एक साइल आया। अब उसने जब मांगा तो मेरे शौहर वो जो था, ये जो आया हुआ है, इसने उसके साथ बहुत बदतमीजी की, धुतकारा, और वो साहिल कुछ नहीं कहा, जरूरतमंद था, वो चला गया खामोशी से। बस उस दिन से हालात पलटना शुरू हो गए। कालम ये हुआ कि माल जो था वो सब खत्म हो गया, करते करते वो बिल्कुल नील हो गया, बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका। यहां तक कि उसने मुझे भी फारिग कर दिया कि गुंजाइश न रही। किस्मत हुआ कि मैं तुम्हारे निकाह में आ गई। तो उस शौहर ने कहा कि वो जो साइल था, जो उस वक्त घर पर आया था, वो मैं था। अल्लाह ताला का कर शान हुई करना ये हुआ कि उसका माल अल्लाह ने मुझे दे दिया, यहां तक कि बीवी भी दे दी। इसलिए बुजुर्गों ने मना फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया उसी बात को, अगर तुम्हें किसी साहिल को नहीं देना, तुम्हारी तबीयत नहीं मान रही, दिल नहीं ठुकरा, बदतहजीबी बदतमीजी मत करो। अगरचे मालूम भी है कि ये शख्स प्रोफेशनल है, यानी आप देखिए प्रोफेशनल आईटी के भी होते हैं और बिजनेसमैन को भी प्रोफेशनल्स कहते हैं, और ये लोग भी प्रोफेशनल है, सोया सभी मांगने वाले हैं, सबका काम पेट का काम है। तो मना क्या क्या, धुतकारो मत, ठीक है तबीयत नहीं मान रही मत दो, लेकिन बदताजीबी बदतमीजी ना करो, झिड़को मत, खामोश हो जाओ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तारीफू पहचानो, क्योंकि अक्सर तजुर्बा कायदा यह है कि जो शुरफा होते हैं और हकीकी मसाकीन होते हैं वो खामोश रहते हैं। इस जमाने में भी वो कहते हैं सफेद पोश होते हैं और वो इस चीज को नापसंद करते हैं, सवाल को, अगरचे जरूरतमंद होते हैं लेकिन हया, रवादारी, गैरत, गैरत की वजह से वो इसको नापसंद करते हैं। तो इसलिए परमात्मा पहचानो। तो जकात ये अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुकूक में से, इसको टैक्स से तशबीह देना ये बहुत खतरनाक बात है। जकात को टैक्स से तशबीह न दे, क्योंकि टैक्स लेती है हुकूमत, तो उसका दुनियावी एक तो फायदा है, आखिरत का कोई फायदा नहीं, और फिर वो हुकूमत खुद खर्च करती है, अपनी जरूरियात हुकूमत टैक्स से पूरी करती है, सदर, वजीर और वुजरा की फौज, जफर मौज, हमारे ही पैसों से मौज करती है, उनकी गाड़ियां, उनकी अयाशियां और उनके अलाउंसेस, पीए एंड डीए और उनके वो बैरून मुल्क सफर, ये सब आवाम के पैसे से। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जकात का मसरफ हमें मत दो, हमें हमारे फरिश्तों के लिए नहीं चाहिए कि जी फरिश्तों की जमात है उनको रोटी खिलानी है इसलिए उनका दस्तरखान लगाना है पहले आसमान पर, चौक चौक पर दस्तरखान लगेंगे बेचारों को दो रोटी खिलानी है, देखो उसने भी खुशी से नारा लगा दिया, ऐसा नहीं है कि उनको रोटी खिलानी है। जब आया करो घूम के आया करो, बीच में से मत आओ। ताकि जो है मजलिस का रंग खराब ना हो। तो हमें नहीं चाहिए, ना हमारे फरिश्तों के लिए, बल्कि तुम अपने ही रिश्तेदारों को दो। अब आप बताइए, आप अगर टैक्स अपने रिश्तेदार को देना चाहे हुकूमत कबूल करेगी कि जी मेरा भाई सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, मैं अपने सगे भाई को दूं, मेरी बहन को जरूरत है मैं उसको दूं, मेरा पड़ोसी जरूरतमंद है मैं उसको दूं, कहा उससे बड़े ये जकात के मुस्ताहिक बैठे हैं। उन बिचारों को पहले टैक्स जाएगा। और अल्लाह ताला ने क्या कायदा रखा, यानी कितना अजीब कि तुम पहचानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तारीफू पहचानो, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम खुद पहचानो, उनकी जरूरतों को देखो कि वो जरूरतमंद है, मुस्तहिक ज़कात है। और मुस्तहिक ज़कात के लिए शर्त ये है उसके पास टीवी भी ना हो, अगरचे बीवी हो। और मेरे शेख फरमाया करते थे बीवी तो नियामत है और टीवी तो टीबी है, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, बीवी नेमत है और टीवी टीबी है। और इसी तरीके से बाज़े लोग क्या करते हैं कि किसी की शादी में मदद करना चाहते हैं जबकि और ज़कात से देते हैं जबकि उस बच्ची के पास सोना भी होता है। कहते बिचारी रेफ्रिजरेटर नहीं खरीद सकती, वॉशिंग मशीन, बेड सेट, डिनर सेट और बेडशीट का सेट और सना सफीनाज और जुनेद जमशेद जे डॉट के कपड़ों का लेटेस्ट डिजाइन खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास, और पता नहीं क्या क्या नाम है। लॉन तो बुक करा लिया लेकिन लॉन की जो लेटेस्ट वैरायटी बिचारी के पास नहीं है, अगर जो उनके घर में छोटा सा लॉन भी है और शादी के लिए लॉन बुक भी करा लिया। तो क्या फरमाया बुजुर्गों ने, फरमाया कि ऐसे को भी ज़कात नहीं लगेगी जबकि है। इसलिए ज़कात की अदायगी में इसका भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़कात उल्टी गले पड़ जाए। हम अपनी तरफ से समझ रहे हैं ज़कात दे दी और ज़कात अदा ना हुई, तो ऐसे ऐसे हालात है कि शादियां होने को के लिए मांगा और उसके पास सोना मौजूद है, उसमें ज़कात नहीं लगती। फिर बाज़े लोग क्या करते हैं हमदर्दी खैरखाई में कि उसके साथ हमदर्दी करते हैं, दूसरे अहले खैर मुखय्यर हजरात से जो मुखय्यर हैं उनसे कहते हैं कि भाई, और वो लोग भी कहते हैं कि भाई कोई हो तो बता देना। अब वो कहते हैं जी फला बच्ची है उसको ज़कात देनी है, वो भी आंख बंद करके दे देता है। और आंख बंद करके देना इसलिए कि उसको वकील बना दिया कि भाई ठीक है तुम्हें दे रहे हैं, तुम वकील बन गए, अब वकील जिम्मेदार है। और वकील की जिहालत की वजह से, क्योंकि आलिम तो है नहीं, ना उलमा से मसला सीखा ना समझा ना जिंदगी में कभी पूछा, ये मौलवी का काम थोड़ी है, वो तो आके पूछो। दुकान बनाने जाते हैं तो पूछते फिरते हैं, मकान खरीदने के लिए पूछते फिरते हैं, स्टेट एजेंट के चक्कर लगाते हैं कि जी रियल स्टेट के पास जाएं। और टैक्स और दूसरी चीजें, वीजा लेना है खुद पूछते हैं। जहां दीन की बात आती है, जी मौलवी से तो हमने तो कभी सुना ही नहीं, एक जुमला ये बस कह देते हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। वहां पर ये कभी भी कोई आदमी अगर मोटरसाइकिल वाला निकला उसने हेलमेट नहीं पहनी, अब जनाब हुकूमत ने कानून बनाया कि हेलमेट शर्त है, बगैर हेलमेट वालों का चलान होगा, पुलिस ने पकड़ा। अब वो सूफी साहब सादगी से कह रहे हैं 15 शाबान है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। क्या उसके इस उज़्र को हुकूमत तस्लीम करेगी? अब वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस में, इमिग्रेशन के काउंटर पे एयरपोर्ट पर ये बड़े बड़े तुर्रम खान ऐसे बंदे थे, पुत्र बने हुए होते हैं कि क्या बताएं बस। उस वक्त तो इतनी मीठी बात करते, जी सर जी सर जी सर, सरकी सरकी भी होती है उस वक्त, और उस वक्त कोई किसी को नहीं कि तुर्रम खान बने हुए हो, ऐसा हाल हो पुलिस वाले के सामने। अल्लाह ताला के कानून है, पूछना चाहिए सीखना चाहिए। अरे जालिम पूछा नहीं तो जिस जहां बताया जाते हैं वहां बैठे तो सही, तवज्जो पैदा होगी, तलब पैदा होगी, फिक्र पैदा होगी। तो इसलिए ज़कात की अदायगी में इस चीज का ख्याल हो कि किसको ज़कात दी जा रही है। अकरबा हैं, अपने करीबी रिश्तेदार हैं, अपने साथ ऐसे सवाल करने वाले भरम वाले पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जरूरतमंद हैं, मसाकीन। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने जो ये तरकीब दी कि मदारिस में दो, क्योंकि वो जो तुलबा होते हैं एक तो वो दीन पढ़ रहे हैं, और दूसरे उस ज़कात को के वकील हमने उलमा को बनाया, वो मसाइल को जानते हैं और उसके मसरब को समझते हैं। इसलिए आप देखिए वहां अगर लगा भी हो तो ये ज़कात सदकात खैरात, ये तीनों के अलग मसाइल है ना। ज़कात का मसरफ और है और खैर का मसरफ और है, वो इसको समझते हैं। अब आम लोग नहीं, किसी को भी उठा के दे दी, अब वो जरूरतमंद है या नहीं है इसको ना देखा। इसलिए और उससे एक फायदा और होगा, वो फायदा ये होगा कि वो एक आलिम कारी हाफिज बन गया, उस्ताद बन गया, फिर उसके बाद उसने मजीद तुलबा को पढ़ाया और उनको पढ़ाने के बाद उसने भी शागिर्द बने, वो शागिर्द उस्ताद बन गए, अब उसके हिसाब किताब कितना जबरदस्त चल रहा है। इसलिए फरमाया कि उसको तरजीह दे क्योंकि उसकी रियायत और ख्याल करते हैं। ज़कात के हिसाब में कुछ चीजें की तरफ तवज्जो की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ज़कात वो इस्लामी तारीख से दी जाती है, जिसको चांद की तारीख बोलते हैं, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउस सानी से लेकर शाबान रमदान शव्वाल वगैरह, यानी इस्लामी महीनों का हिसाब रखें। अंग्रेजी महीने से नहीं कि ईयर एंड, जून ईयर एंड या दिसंबर ईयर एंड या सितंबर ईयर एंड, उसका हिसाब नहीं है, बल्कि इस्लामी तारीख से उसका हिसाब रखें। लिहाजा जिस तारीख को माल आया इस्लामी तारीख नोट करें। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तरगीब दी कि इस्लामी तारीख को याद कर रखने का एहतमाम क्या करो, भाई पैदा कब हुए इतना तो मालूम हो, शादी कब हुई, फलां कोई काम कब हुआ, औलाद, इस्लामी तारीख मालूम, हम लोगों को कोई हिसाब ही नहीं है, अंग्रेजी याद है, ऐसा पक्का सबक। अब उसके साहब कैसे चलेगा, आप देख ले अरब इमारात सऊदिया पूरा चल रहा, हिसाब उन्होंने रखा हुआ है माशाल्लाह, मुमकिन है कोई हिलना ही ना चाहे तो क्या करे। एक आदमी बहुत सुस्त था, हर वक्त पड़ा रहता था, बीवी ने उससे कुछ बात हो रही थी, गुस्से में आकर कहा इतना काहिल और सुस्त है तू, अगर काहिली और सुस्ती का आलमी मुकाबला हो फीफा वर्ल्ड कप के टक्कर का, तो तू अव्वल नंबर आएगा और मैच फिक्स भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसने अंगड़ाई ली लेटे लेटे, उसने कहा हाँ कहती तो तू ठीक है लेकिन जाए कौन। ये सुस्ती कि करे कौन। तो इस्लामी तारीख को याद रखे, उस पर हिसाब है। मसलन यकुम शाबान को पैसा आ गया और वो 52.5 तोला चांदी के जो कीमत है उसके बराबर है। हम यहां चांदी की क्या कीमत चल रही है, 700 रुपए तकरीबन 40 के लगभग बनेगा। तो अब वो 52.5 तोला चांदी के बराबर उसके पास कीमत के बराबर उसके यहां रुपया पैसा आ गया। अब जनाब वो उस पर साल गुजर गया, अगले यकुम शाबान को अब 30 को पूरा साल हुआ, अब जनाब वो उस पर ज़कात अदा करे। अब उस ज़कात की अदायगी का तरीका ये है, उससे पहले बात, अब उसकी एक तारीख मुकर्रर हो गई, अब अगले साल भी इसी तारीख को देखेगा वो, सही ना जनाब, ये अब उसका ईयर एंड बन गया। वो क्या रजब का आखिर उसका ईयर एंड बन गया। थोड़ा सा और सामने आ जाए, इधर आ जाए, रजब का आखिर उसका ईयर एंड बन गया। अब उसी हिसाब से वो चलाता रहे, अब हर साल उसको यही देखना है, साल में उतार हो चढ़ाव हो कुछ भी होता रहा, अब उसको यही तारीख उसकी फिक्स है, इसको देखे। रमजान का जकात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि जी रमजान में जकात निकालनी है, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया, हालांकि तारीख है। अगर कोई बच्ची उसके पास सोना मौजूद है पहले से, अभी वो नाबालिग है, उस पर जकात नहीं है, लेकिन जिस तारीख को वो बालिग हुई उसी तारीख से उस बच्ची की जकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लिहाजा वो उसकी तारीख जकात की तारीख कहलाएगी। अब सारी जिंदगी उस बच्ची को वही तारीख याद रखनी है, बताइए कितनी जरूरी बात है कि नहीं है। तो अब वो इसी हिसाब से निकालता रहे, क्योंकि अगर अंग्रेजी रखा तो हर साल 10 दिन का फर्क आता है, 33 साल में जाकर पूरे 1 साल का फर्क हो जाएगा, और 1 साल जकात ना अदा करने का गुनाह इसके सर पर आएगा, महरूम रहेगा उससे। इसलिए फरमाया कि अरबी हिसाब किताब रखे, जकात की अदायगी में किन चीजों का ख्याल रखना है, वो मशीनरी, वो मकान, वो जमीन जो आदमी ने तिजारत के लिए नहीं ली कि जी कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा, तो ये तिजारत के हुक्म में नहीं है, अगरचे वो मकान किराए पे भी दिया हुआ या अपनी जमीन किराए पे दे दी, तो उस पर जकात नहीं है। जकात किन पर है? अपने हाथ में जो नकद है, कैश, कैश इन हैंड। नंबर 2, कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है। सोना चांदी फॉरेन करेंसी और तिजारत का माल कितना भी हो, चाहे वो 5,000 का ही हो, अब ये सब चीजें हैं तिजारत का माल। उसी तरह से अगर उधार किसी को दिया हुआ है, मसलन 5 लाख रुपए उधार दिए, 50,000 रुपए उधार दिए, वो भी शामिल किया जाएगा हिसाब में। सही है ना, मोटी मोटी बात समझा रहा हूं, तफसील के लिए इनफरादी तौर पर मुफ्तियाने किराम से रुजू करें, लेकिन कुल्ली फॉर्मूले के तौर पर कुछ चीजें पेश की जा रही है। नकदी चाहे अपने पास हो, चाहे बैंक में हो, चाहे फॉरेन करेंसी की डॉलर की शक्ल में हो, चाहे वो डॉलर उसके डार्लिंग के पास हो, और वो सोना चांदी जो उसकी मिल्कियत है, चाहे अपनी बीवी को इस्तेमाल के लिए दिया हुआ, ऐसा मुमकिन है कि माँ है शौहर का, बीवी से कहा आप छपे तुम इस्तेमाल करो, और वो तिजारत का माल, और अगर कोई मशीनरी वगैरह है तो वो भी, और वो जो किसी को उधार दिया हुआ है यानी पैसे लेने हैं, जिसको रिसीवेबल्स कहते हैं, उधार वसूल करना है, वो भी हिसाब में आएगा। इन सबको जमा किया, इनका सम निकाला, उसके बाद जो पेबल्स हैं यानी जो किसी को अदायगी करनी है, चाहे वो कर्जा हो, पैरल पेबल्स जो अदायगी करने वाली चीजें, उसको माइनस कर दे, मनफी कर दे, मिनहा कर दे, उसको निकाल दे जो रकम बनी। अब वो अगर 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर आ गई या ज्यादा हो गई, तो अब उस पर 2.5% कैलकुलेट कर दे, 2.5% निकालकर 1,25,000, अब ये जकात अदा की जाए। और अगर 52.5 तोला चांदी से कम है तो फिर मजे करें, कभी जकात दे के मजे करे, कभी न दे के मजे करे। एक बाबा जी मेरे आते थे, औरंगी टाउन में रहते थे, एक दिन हालात खराब थे, बसें चल नहीं रही थी, तो वो बेचारे पैदल चल पड़े औरंगी टाउन से। तसव्वुर करें आप, उस बेचारे को ऐसी मोहब्बत, बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे, ऐसे दीवानों के हर जुम्मे को पाबंदी, बेचारे बीमार, कहां औरंगी टाउन और कहां सोराबगोट, एक तो सिमत भी मुखालिफ, और बाकी चीज भी मुखालिफ। वो बेचारा पैदल चल पड़ा, खुद सुनाने लगे करीमाबाद के पुल पर, कहा मैं थक गया था तो थककर ऐसे सर पर हाथ ऐसे रख के, हथेली खुली हुई थी, ऐसे बैठा था। क्या एक साहब गुजरे तो उन्होंने मेरे हाथ में पैसे डाल दिए। क्या मुझे हंसी आ गई। तो साहब हंसने लगे, भाई क्यों हंस रहे हो। क्या बात बताया, ये बात है। उन्होंने कहा अच्छा चले आप रख ले। तो कहने क्या करूं। मैंने कहा चले अल्लाह दे रहे हैं रख ले। एक आदमी होटल में चाय पी रहा था तो एक मांगने वाला एक फकीर आया, उसने कहा कि भाई चाय मुझे भी पिला दो। उसने कहा भाई होटल वाले से कि इसको भाई एक कप चाय दे दो। उसने कहा बाबा एक कप नहीं दो कप। भाई दो कप क्यों। क्या वो असल में मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में। उसने कहा रे फकीर होकर गर्लफ्रेंड रखता। उसने कहा बाबा हालात कुछ और। फकीर ने गर्लफ्रेंड नहीं रखी, गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। मान लाइए और इधर बैठो। तो ये है चंद जरूरी गुजारिशात। और दूसरा कारोबारी हजरात के लिए इस बात का जरूरी है कि कीमतें फरोख्त, कीमतें खरीद है 500, फरोख्त है 600, तो हिसाब कीमतें फरोख्त पर होगा। इसकी तफसील जरा मालूम कर ले, पूछ ले, सीख ले, समझ ले। आखिरी बात जरूरी जकात से मुतालिक वो ये कि जकात के लिए जरूरी जो तारीख है, मान लो यकुम शाबान या 15 शाबान तारीख है, अब उस तारीख को हिसाब किताब कर ले। अब ये जरूरी नहीं है मान लो कि 50,000 जकात बनी उसी दिन निकालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, शरीयत में कितनी राहत है। ऐसा नहीं, बल्कि वो ये कर सकता है कि अब 50,000 हो गई ना, अब हफ्ते बाद 10 दिन बाद थोड़े थोड़े पैसे महीना महाना तौर पर पैसे दे दिए, पूरे साल में पूरा कर सकता है। और जो अदा करता जाए उसका हिसाब रखता जाए कि जी मैंने इतनी जकात अदा कर दी। अब मान ले कि उसको जकात दी 50,000, 6 महीने में उसका पूरा हो गया। जकात 50,000 थी, 6 महीने में उसने अपनी पूरी जकात अदा कर दी। अब 6 महीने गुजरने के बाद कोई जरूरतमंद आ गया किसी मदरसे में, को हुआ मौका या कोई और जरूरतमंद आया, उसको वो जकात अदा कर रहा है, जकात से दे रहा है। अब उसको ख्याल आया यार मैं तो जकात पूरी हो चुकी है, अब इसको जकात कैसे दूं। अब भी वो जकात दे सकता है। और उसमें क्या, वो जो आइंदा साल हिसाब करेगा ना, अब ये उसका हिसाब रख ले। सुभान अल्लाह, पता चला एडवांस में भी जकात दी जा सकती है। सुभान अल्लाह, कितनी राहत है। कि ये नहीं कि यकमुश्त, इसकी जरूरत भी नहीं है कि एक ही वन टाइम में एक ही मर्तबा में पूरी की पूरी दे, नहीं, आप किस्तों किस्तों में भी दे सकते हैं। सुभान अल्लाह, एडवांस में जाओ, कितनी राहत है। जैसे तवाफ है, तवाफ तो एक चक्कर में करना पड़ेगा, यानी एक ही वन गो में, वन टाइम और वन गो में करना होगा, एक ही मर्तबा में। लेकिन जो सही है, सही में मजे हैं, सही में ज्यादा सही नहीं है। सही माने कोशिश, सही में ज्यादा कोशिश नहीं है। एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया, मान लो उसका होटल मरवा की तरफ है, सफा से शुरू किया, मरवा से निकल के चला गया होटल। अब नमाज पढ़ने के लिए आया, मरवा से फिर शुरू किया सफा तक, सफा तक, फिर सफा से फिर नमाज पढ़ी, फिर निकल सफा से मरवा गया, 3 चक्कर हो गए। सुभान अल्लाह, राहत। एक आदमी बूढ़ा है, बीमार है, घुटनों में तकलीफ है, आजकल जवान मरीज भी होते ना, जवान बूढ़े भी होते। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बाल बिल्कुल, यानी 28-30 साल की उम्र में बिल्कुल बाल सफेद हो गए। तो मैं उसको जब देखता हूं तो कहता हूं जवान बूढ़े क्या हाल है, हंसता है वो मोहब्बत की जैसे उसको। तो अब अगर वो है जरूर बेचारा नहीं लगा सकता चक्कर, एक साथ तवाफ में तो पूरा एक साथ करें और सही के अंदर सुभान अल्लाह कैसी राहत है कि एक चक्कर लगाया और चक्कर देके चला गया, फिर वापस आया फिर शुरू कर दिया अगली नमाज में कर लिया। इस तरह वक्फे से करके वो अपने सही को मुकम्मल कर सकता है। तवाफ में तसलसल है, सही में हुआ मरवा पे बिस्तर डाला लेट गया, सफा से चला उसका होटल सफा की तरफ है, मरवा पे पहुंचा थक गया चक्कर आने लगे अब वहां लेट गया, उसने कहा बिस्तर डालो अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुंह तो आया पढ़ के सो गया। अब वो वहीं से दोबारा मरवा से लेटने में उठा आधे एक घंटे बाद नींद की उठा जनाब दोबारा भी शुरू कर सकता है वहीं से, कैसी राहत है साई के अंदर। और वो जो मिलैन है जहां हरी बत्ती जल रही होती है ग्रीन चैनल वाली, वो असल में सब्ज पहले सुतून थे अब उन्होंने रोशनी बना दी निशानी के लिए, वहां जो दौड़ है वो औरतों के लिए नहीं है मर्द दौड़े उसमें, और दौड़ने का मतलब ये नहीं कि मैराथन रेस शुरू कर दी, एक तेज रफ्तार तेज दौड़ है लेकिन ऐसा नहीं। तो ये चंद बातें जरूरी ज़कात से मुताल्लिक थी जिनको अर्ज किया, और फिर अर्ज करता हूं कि यकीनन इंसान है एक मजलिस में पूरी तफसील ना बयान कर सकता है ना समझाने इफाम और तफहीम में समझाने में समझने में वक्त लगता है, लेकिन आखिर में यही बात अर्ज करूंगा कि बराए मेहरबानी मुफ्तियान इकराम से जाकर इनफरादी तौर पर अपनी हालत को पेश करके मसाइल को समझ ले सीख ले ताकि कोई कमी बेशी ना रहे और उसके अंदर फिर अल्लाह ताला के इस हुक्म इताअत और फरमाबरदारी के हुक्म पर अमल हो जाए। अल्लाह ताला अपने करम से हमको तौफीक दे कि ये जो मेरे दोस्तों पार करने वाली चीज है, हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे शेख और मुर्शिद रहमतुल्लाह ने सुनाई, फरमाया कि हकीमुल उम्मत ने सुनाया कि एक अंग्रेज अपने काम में मशगूल था, किसी ने उसको कहा कि देखो तुम्हारे मोहल्ले में आग लग गई है तुम्हारा घर भी उसकी जद में आ गया, तो अपने काम में मशगूल है, उसने बस इतना कहा कि मेरे घर को आग नहीं लग सकती। बड़े हैरान हुए, बाद में पता चला कि सबके घर जल गए उसका घर बच गया। हम सभी कैसे तुम इतने कॉन्फिडेंट और इतने पुर एतमाद इतने वसूख से कह रहे हो मेरे घर को आग नहीं, आखिर क्या बात है। तो उसने अजीब बात की, हकीम उम्मत रोते फरमाने लगे, हमारे उसने कहा कि मैं मुसलमानों के तरीके पर ज़कात अदा किया करता हूं। हकीम उम्मत रोते हुए फरमाने लगे कि वो ज़कात जो कि मुसलमानों का मामला है लेकिन उस पर अमल की बरकत काफिर को उसके उस अमल का फायदा काफिर को भी पहुंच रहा है तो मुसलमान को कितना उसका फायदा मिलेगा। हाँ उसको दुनियावी फायदा मिला, मुसलमान को उखरवी फायदा भी मिलेगा आखरत का फायदा भी मिलेगा, इसलिए ज़कात को बोझ न समझे, अगरचे दिल में तकलीफ होती है। इस पर सुनिए, अल्लाह अल्लाह, हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब कामिल पूरी रहमतुल्लाह अलैह कैम्बलपुर के थे, उसका नाम कामिल पूरी रखा और कामिल साहब चले आ रहे हैं। देखिए काम अपने नाम के बगैर नहीं आते ये, आते हैं आते हैं। तो कामिल पूरी हकीमुल उम्मत के खलीफा थे और खिलाफत भी उनको कैसे मिली, मुहद्दिस सहारनपुर है ये, सहारनपुर मदाहिर उलूम सहारनपुर के मुहद्दिस है। हकीमुल उम्मत से बैत नहीं थे लेकिन इस्लाह खतों की दावत करते थे और इस्लाह खतों की दावत का आप तसव्वुर करें, बैत नहीं मुरीद नहीं, एक तो इस्लाह खतों की दावत बगैर बैत के, और दूसरी बात हकीमुल उम्मत को देखिए कि वो उनके इस्लाह खतूत अपनी जिंदगी में जो हकीमुल उम्मत के हालात पर किताब शाया हुई जिसका नाम है अशरफुस सवानिक, جو حکیم الامت کی سوانح حیات پر اور حضرت کی حیات میں شائع ہوئی. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمت اللہ علیہ کے وہ خطوط اس میں حکیم الامت نے شامل کروائے ان کے اخلاص کی برکت سے کہ مرید نہیں ہے. اور اصلاح خط و کتابت ادھر حکیم الامت کو دیکھیے, یہ نہیں فرمایا کہ میاں شیخ ہے بنائے نہیں پیر بنائے نہیں مفت کے مدے اڑا رہا, نہیں. ان حضرات کی اخلاص کا یہ عالم کہ مرید کی اس شخص کی اصلاح کرانے والے کی اس پر نظر نہیں کہ بھائی میں مرید نہیں ہوں, اور ان کی اس پر نظر نہیں کہ یہ مرید نہیں ہے, وہ اصلاح کر رہا ہے وہ اصلاح کروا رہا ہے. سبحان اللہ, پڑھنے کے لائق ہے وہ خطوط. حکیم الامت نے جاری کر انہیں خطوط کی میں سے ایک بات ہے زکات سے متعلق. آگے دیکھیے کیا ہوا, بھی بتاؤں گا وہ بھی انہی کی بات. آگے دیکھیے, ایک دفعہ حکیم الامت کی طرف سے خط گیا, خط کھولا تو اس میں اجازت بیعت تھی, خلافت عطا فرما دی. اب کیا ہے, وہ مرید نہیں ہے لیکن حکیم الامت نے ان کو خلافت دی. یا تو مرید بن کے خلافت کی متمنی رہتے, لہذا ایک صاحب نے ہمارے شیخ سے بھی کہا تھا, کسی کے ذریعے کہا تھا, انہوں نے آگے بات نہیں پوچھائی لیکن کہا یار حضرت سے ہمیں بھی خلافت دلوا دے کچھ ذرا ہماری روٹی پانی چل جائے گی. نعوذ باللہ, بتائیے کتنا پیارا منصب اور اس سے دنیا مانگی جا رہی ہے. حضرت کا اخلاص دیکھیے, مرید نہیں ہے لیکن خلافت بھیج دی. اب وہ خط ملا حیران, پاؤں تلے جس کو کہ زمین نکل گئی, ہوش اڑ گئی کہ یہ کیا خلافت مجھے دے دی. حکیم الامت خدمت میں حاضری دی, تھانہ بھون حاضر ہوئے, حضرت کو خط دیا کہ حضرت یہ کیا, حضرت میں تو آپ کا مرید بھی نہیں ہوں. اب حضرت کی نظر اس پر نہیں تھی, ان کے دل پر تھی, ان کے تعلق مع اللہ پر تھی. ہنس کر فرمائے ارے میاں مرید ہوتے کیا دیر لگتی ہے, اور ابھی مرید بنا لیتے. حضرت نے اس کی وقت بیعت کیا. تو یعنی آپ یہ وہ مرید خلیفہ ہیں جن کو خلافت پہلے ملی مرید بعد میں ہو, یہ اخلاص. اور ان کا اخلاص اس کی طلب ہی نہیں کہ اچھا بھائی میں مرید نہیں بنوں گا, اچھا خلافت ہی نہیں ملے گی, اس کی طرف توجہ نہیں. اور عرض بھی کر دیا کہ حضرت میں تو خلیفہ نہیں, آپ نے مجھے خلافت دے دی, میں تو مرید بھی نہیں ہوں. اللہ کیا اخلاص. ہاں یہاں تو مرید بنتے ہی وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں خلافت کے, اور یہ طلب اس لیے, یہ حب جاہ کی بیماری ہے, حب جاہ کا مرض ہے طلب خلافت. اور اپنے کو اس کا اہل سمجھنا, یہ حب جاہ کی بیماری ہے. اب ان کا واقعہ سنیں, انہی کے خطوط میں سے ایک واقعے میں سے ایک واقعہ ہے کہ زکات ماشاءاللہ نے مال دیا تھا, تاجر تجارت کیا کرتے تھے. ہمارے حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نیو ٹاؤن مدرسہ عربیہ اسلامیہ کے جو مہتمم تھے, حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد کا ہے, ان کے والد صاحب ہیں. مفتی صاحب انہی کے بیٹے ہیں. ماں عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ نے مال دیا تھا, تجارت بھی کرتے تھے تو زکات ادا کرتے تھے. تو حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت جب زکات ادا کرتا ہوں تو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. عالم ہے اور عالم بھی کیسے, محدث کے درجے کے, اونچے درجے کے عالم. تو کیا لکھا کہ جب زکات ادا کرتا ہوں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے. یہ سوال سب کا ہے نا بھائی, مال جا رہا हजरत ने जवाब लिखा, जब तकलीफ होती है तो आप क्या करते हैं? उन्होंने जवाब लिखा, हजरत अल्लाह ताला के हुक्म पर नजर रखते हुए दिल के खिलाफ करके अदायगी जकात की करता हूं। हजरत ने फरमाया, अब हजरत का जवाब तहरीर फरमाया, आपको दो अजर मिलेंगे, डबल सवाब मिलेगा, दुगना सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा, दोहरा अजर मिलेगा। एक तो जकात को अदा करने का कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया, और दूसरा अपने दिल के खिलाफ करने का कि दिल ने कहा जकात मत दो, हमने कहा नहीं करेंगे, हम तेरे बंदे नहीं अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला का हुक्म है जकात अदा करने का, जकात अदा करेंगे। तो फरमाया इस बात डबल अज, तो पता ही चला कि किसी मसले पर अमल की वजह से दिल में तकलीफ भी होती है, लेकिन वो दिल को नहीं अल्लाह को देखता है, और अल्लाह ताला की खातिर से वो काम कर डालता है, या गुनाह से बचने का मौका है, अल्लाह ताला के हुक्म की खातिर से गुनाह से बचता है, तो इसको डबल सवाब मिलेगा, एक दिल के खिलाफ करने का, एक उस मसले पर अमल करने का। मसलन शलवार टखनों से ऊपर की, अब दिल में तकलीफ होती कि यार लोग जमाना मुआशरा पुरानी आदत, बेटा नमाज के लिए वक्त दिया जाएगा, पुरानी आदत, लेकिन वो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करके शलवार टखनों से ऊपर करता है, ये मर्द के लिए। ऐसा ना औरतें भी सुन ले और वो भी ये काम शुरू कर दे। जैसे एक साहब है, अब वो बेचारे नए नए तबलीग में गए, जब तबलीग से वापस आए तो अब वो अपनी हमशीर बहन, उसको वो नमाज पढ़ रही थी, तो उसको कहा तुम खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ती हो, क्योंकि औरतों के नमाज का अंदाज मुख्तलिफ है, मर्दों का मुख्तलिफ है। मर्द नमाज में थोड़ा सा पांव खोल के खड़े होते हैं, औरतें मिला के खड़ी होती हैं, फिर औरतें सीने पर हाथ बांधती है, मर्द नाप के नीचे बांधते, फिर रुकू में मर्द की कमर और सर सुरीन बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तख्ते की तरह से बराबर हो जाए, और घुटनों को पकड़े, घुटनों में उंगलियों को खुला रखे और घुटने को पकड़े, ये मर्द के लिए। और औरतों के लिए कमर बिछानी नहीं है, बल्कि इतना झुके कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए, और सब घुटने को हाथ लगा दिया, गोया कि ऐसे जरा सा हाथ लगा दिया, पहुंच जाना बस घुटने तक हाथ। उसी तरह से मर्द के लिए है कि जब वो उतरेगा सजदे के लिए, बिल्कुल कमर सीधी 90 डिग्री ज़ाविया कायमा के साथ बिल्कुल ऐसे सीधा उतरेगा, घुटने रखेगा, फिर अब उसकी कमर बेंट होगी, कमर खम में खम आएगा, अब कमर झुकेगी, पहले बिल्कुल सीधा ऐसे उतरेगा। और औरत के लिए सिमट के उतरे, सुभान अल्लाह। और यही हाल सजदे से उठते वक्त है, खड़े होते वक्त है, जब उठेगा तो घुटने के बाद उसकी कमर बिल्कुल सीधी और ऐसे सीधी कमर के साथ खड़ा होगा। और औरत के लिए है कि सिमट के खड़ी होगी, सत्र के साथ सिमट के खड़ी होगी। सजदे के अंदर मर्द के लिए है कि अपनी कोनियों को जुदा रखे, अपने घुटने पर को खड़ा यानी घुटने पर सहारा, और पांव की उंगलियों को मोड़कर उसका रुख किबले की तरफ हो, और हाथ को फैला दे। और औरत के लिए है कि अपने दोनों पांव दाएं तरफ निकालकर सिमट कर, और सजदा मर्द के लिए अपनी कद के एतबार से जरा तवील सजदा करे, और हाथों की कोनियों को भी फैला दे, और उंगली का रुख किबले की तरफ हो। और औरत के लिए कि बिल्कुल सिमट कर, छोटी जगह पर सिमट कर वो सजदा करेगी, बैठेगी तो जब मर्द बैठेगा कादे के अंदर, तो उस अपने उल्टे पांव को बिछाकर उसके ऊपर बैठेगा, सीधा पांव बाहर निकालकर उसको खड़ा करके उंगली का रुख किबले की तरफ होगा। और औरत है, दोनों पांव बाहर निकाले और ऐसे करके सिमट के बैठ गए। फर्क है पूरी नमाज में मर्द की और औरत की नमाज में फर्क है। इसलिए अब उन साहब ने कहा कि तुम नमाज खिलाफ सुन्नत पढ़ाई और ऊपर से और डांट लगाई कि तुम्हारी शलवार टखनों से ऊपर क्यों नहीं है। मेरे शेख दामद बरकातुल्लाह सुनाते ना, अब वो साहब एक साहब ऐसे तीन चिल्ले लगाकर आए, आकर बीवी की पिटाई शुरू कर दी। उसने कहा भाई क्यों मार रहे हो, क्या तुम दाढ़ी क्यों नहीं रखते। उसने कहा अल्लाह के बंदे औरतों की तो दाढ़ी निकलती नहीं है। उसने और पिटाई की, आप क्यों मारता है। कहा इरादा क्यों नहीं करते। इरादा तो कर, तो मर्दों का हुक्म। और अब वो शलवार टखनों से ऊपर करे, दाढ़ी रखता है एक मुट्ठी। अब जनाब उसको लोग होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसकी नजर अल्लाह ताला पर है, अल्लाह ताला के हुक्म पर उसकी नजर है। ऐसी औरत बुरका पहनती है, बुरका पहनती है, पर्दा करती है, और लिबास के अंदर इस चीज का ख्याल कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो। अब उसमें मान लो पूरे खानदान में सब मॉडर्न और अल्ट्रा मॉडर्न बर्गर वाली गड़बड़ कर रहे हैं, अब वो पूरे खानदान में एक अकेली है जो पर्दा कर रही है, अब उसको तकलीफ है, लेकिन उसकी नजर अल्लाह पर है कि मेरे मालिक का हुक्म है तो उसको डबल सवाब मिलेगा। सुहा कभी उसको भी ख्याल आता कि मैं भी ऐसे हो जाऊं, सभी ऐसे कर रहे, लेकिन करने अल्लाह का हुक्म है, नहीं करना। ज़कात अदा करने में तकलीफ हो रही, इसलिए ज़कात के मुताल्लिक हमारे बुजुर्गों ने एक बात और समझाई है कि बीवी की जो औरत पर जो ज़कात है उसको अदा करने की जिम्मेदार वो खुद है, शौहर उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि औरत अपनी ज़कात को अदा करने की जिम्मेदार खुद है, चाहे शौहर हो या चाहे बाप हो, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन साथ में हमारे बुजुर्गों ने नसीहत की बाप को, भाई को या शौहर को कि भाई अगर तुम उसकी तरफ से तत्वान अदा कर दो तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बीवी है, मोहब्बत की वजह से, एक ताल्लुक की वजह से, सुभान अल्लाह, रिश्तेदारी के हक की वजह से, जिम्मे नहीं है उसके, लेकिन बराए मोहब्बत तो उसकी तरफ से तुम ज़कात अदा कर दो, कुर्बानी कर दी। अगर मान लो शौहर मजबूर है, माली तौर पर उसकी गुंजाइश नहीं है, वो भी वो ज़कात देती है और वो बेचारा मुस्तहिक है ज़कात है। बहरहाल शौहर को, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते, इसी तरह बेटा और बाप को नहीं, हाँ भाइयों को दी जा सकती है। ये भी चीजें पूछ ले रिश्तेदारों, और ये भी हरकत ना करे कि ज़कात का वक्त आया, पांच भाइयों का मुश्तरका कारोबार है और एक को कहा बस सब तेरा, सब तुम सब माल से दस्तबरदार हो जाओ, वो दस्तबरदार हो गया, अब बेचारा कंगाल हो गया, कहा भाई ज़कात दो, ज़कूत रुका, अब उसको कहा अच्छा भाई ये लो ज़कात तुम लो, कहा अच्छा चलो हम तुम्हें और माल भी देते हैं, चलो ये तुम्हारा माल भी, गाड़ी भी तुम्हारी, फला भी। तो ये दगाबाजी और धोखेबाजी ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा ना करना चाहिए, ये बड़ी बरकत की चीज है। ज़कात तो बड़ी किस्मत की बात है मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने ये माल को बढ़ाने वाली चीज है, पाक करने वाली चीज है, बल्लियात के दाफे बल्लियात है, यानी काले बकरे से वो बलाएं नहीं जाती जो ज़कात से चली जाती है। और इससे ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि लोगों ने काले बकरे को, काली बकरी को ज़कात और बल्लियात और मुसीबतों के दफा करने का जरिया समझा। ज़कात की बरकत फर्ज है, सोचे आप, وقیم الصلاۃ و آت الزکا، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اس کو رکھا. اتنا بڑا قیمتی حکم ہے، کتنی بڑی قسمت کہ ہمارے مال اللہ تعالیٰ کیا خرچ کرنے کے لیے قبول ہو جائے. سبحان اللہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے جب حرم شریف کی توسیع، مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، تو اس وقت حکومت ایک ایک جب کسی کا مکان، کسی کی دکان آتی تھی تو 1,00,000 ریال کے بدلے میں 50,00,000 ریال دیتی تھی. تو اس وقت لوگ دعا کرتے تھے، اس وقت دعا کرتے تھے کہ یا اللہ حکومت کی نظر میں میرا مکان آ جائے، حکومت کی نظر میں میری دکان آ جائے، وہ دعا کرتے تھے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ الحمدللہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو گئے، اور وہ فرض حکم اللہ تعالیٰ کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کو قبول فرما لیا، بس اپنے کرم سے اس پر ہم زکوٰۃ نکال دیں. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے. اور پھر آخر میں بات کا عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی مسائل، انفرادی حالات کو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مشورہ کر کے اور اس کی ادائیگی کی صورت حالوں کو پوچھ کر اور پھر وہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں. اللہ تعالیٰ اس حکم پر اپنے کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ مغفرت بے حساب فرما. یا اللہ نصف شعبان کی رات آئی چاہتی ہے کہ جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی اس میں مغفرت فرماتا ہے، یا اللہ اس مغفرت کا فیصلہ ہمارے لیے بھی فرما لیجئے. یا اللہ بے حساب مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھا دیجئے، گناہوں میں اور نافرمانیوں میں یا اللہ ہمیں پیچھے کر دیجئے. 100% اپنا متی فرما بردار اور اطاعت گزار ہم بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں نصف شعبان کی جو رات ہے اس کی برکات ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ گناہ جو کہ آپ کی عنایات اور مہربانیاں اور فضل کو، رحمتوں کو روکنے والا ہے، یا اللہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اور ہماری جلوتوں کو، ہمارے خلوتوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری سے آباد فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جانی حقوق، مالی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق دے ہم اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی خدمت کریں، یا اللہ تعالیٰ جان سے، مال سے، اور یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جان سے، مال سے، آبرو سے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کے ذمے جو زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے اس کی ادائیگی کو ہمارے لیے آسان فرما، سہل فرما، اپنی محبت بھرا وہ دل عطا فرما کہ آپ کی شریعت و سنت کو محبت سے اس پر عمل کریں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما، اپنا فضل خاص فرما، عنایت و مہربانی عطا فرما، حاجتوں کی حاجت روائی فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہر غم کو خوشی سے تبدیل فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے. شو یا اللہ تعالیٰ متبع شریعت بنا، متبع سنت بنا دیجئے. اپنے کرم کے صدقے میں جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو مطیع اور فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، دلوں میں نرمی عطا فرما، ہمارے شہر में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्कों में या अल्लाह अपने करम से अमन कायम फरमा, या अल्लाह सुकून और शरीयत और सुन्नत का निफाज फरमा, या अल्लाह अपने करम से बदअमनी बेचैनी और मुसीबतों को दूर फरमा, या अल्लाह यकीनन ये मेरे गुनाह हमारे गुनाहों की नफूसत की वजह से, या अल्लाह अपने करम से मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हम सबकी खताओं को मुआफ़ फरमा, रहमतों का नुज़ूल फरमा दीजिए, और इस रहमतों को रोकने वाली चीज़ें या अल्लाह ये हमारे गुनाह इसको दूर फरमा दीजिए, और अपने करम से इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, मगफरत बेहिसाब फरमा, या अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा, अपनी ताअत और फरमाबरदारी की वाली हयात अता फरमा, और या अल्लाह अपने करम के सदक़े में मगफरत बेहिसाब फरमा, मगफरत बेहिसाब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے، بھائیوں نے اور بہنوں کی طرف سے، ماؤں کی طرف سے دعاؤں کی فرمائش ہے، یا اللہ ہم سب کی اور ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، اللہ سب کی حاجت روائی فرما دیجئے، اہل تمام خیر عطا فرما اور ہر شر اور برائی سے حفاظت نصیب فرما۔ اللهم انا نسالک من خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا بالله، ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔